और अब हमारे पास महान श्रेष्ठ तपस्वनी वरदानी बाबा के अनमोल रतन मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हमारी संतोष दीदी जी हमारे बीच आ चुके हैं। हम संतोष दीदी जी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं। ड्रामा और ब्राह्मण परिवार की यही विशेषता है जो हम अपने को हर स्थिति परिस्थिति में एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से पुनः अभिवादन करते हैं। तो संतोष दीदी जी बाल्यकाल से ही अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किए हुए हैं। आपने साकार में मम्मा बाबा हमारी बड़ी दादियां सबका बहुत गहराई से सानिध्य प्राप्त किया है। आप वो महान श्रेष्ठ आत्मा हैं जो सदा ही बड़ों के संग रहे और बाबा के कार्य में बड़ों के संग सदा सहयोगी रहे। और यूं अगर हम कहें तो हमारा जो सोशल विंग है अभी प्रेजेंट में तो आप ही उसके चेयरपर्सन हैं। बॉम्बे महाराष्ट्र आंध्रा ये सारा जोन आप ही देखते हैं। बहुत बड़ी आपकी राजधानी है लेकिन जितनी बड़ी इनकी जिम्मेवारी है मैं तो देखती हूँ कि उतना ही आप बहुत हल्के हैं। ऐसा कभी नहीं हम देखते कि संतोष दीदी कहे मेरा तो ये सेंटर का काम है कैसे। अभी भी देखो नीचे कुमारों की भट्टी चल रही है वो भी आप कुमारों की भट्टी के लिए विशेष आए हैं। ज्ञान सरोवर में सोशल विंग का प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए भी आप विशेष हैं। और जयपुर वालों को तो लॉटरी मिल गई हमें मालूम पड़ा संतोष दीदी यहाँ हैं तो हमने कहा दीदी आप हमारे बीच में आइए तो हम भी आपसे लाभ लें। ऐसे महान श्रेष्ठ आत्मा का पुनः अभिवादन। समय कम है अब हम सुनेंगे संतोष दीदी जी से।
ओम शांति। सेवा का चांस मिलना ये बड़े भाग्य की निशानी। जिसके भाग्य बड़े होते हैं उसको ही सेवा का चांस मिलता। इसीलिए जब से बाबा के बने हैं तो ये इस बात को पक्का किया है कि कभी भी सेवा का चांस मिले चाहे स्थूल सेवा हो चाहे सूक्ष्म सेवा हो कभी भी ना नहीं करनी। क्योंकि अभी तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, पहले जब हम लोग आए तभी तो बहुत थोड़े लोग थे। उस समय पर सब सेवाएं थोड़े लोगों को ही करनी होती थी और जब ओम शांति भवन बना तो भाई बहनों का आना चालू हुआ चारों तरफ से। तभी भंडारा संभालने वाले भी नहीं कोई होते थे तो हम हमेशा यहाँ दो दो तीन तीन मास आके सीजन में रहते थे और सारा खाने की डिपार्टमेंट संभालते थे। बड़ा आनंद आता था उसमें। तो अव्यक्त बाप दादा ने ऐसा ही एक बार हमारे से पूछा आपको ये ड्यूटी क्यों मिली है भोजन खिलाने की। मैंने कहा अभी ड्यूटी कोई तो करनी है क्योंकि हम तो अल्पज्ञ बुद्धि आत्माएं हैं तो अपने हिसाब से जवाब देते। हमने कहा बाबा कोई तो ड्यूटी करनी है इसीलिए ये ड्यूटी मिली है। तो बाबा ने कहा नहीं, जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनका सर्व आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। तो आपके पास सब थाली लेकर के आते लेने के लिए। तो देखो बाबा ज्ञान का सागर है तो बाबा एक एक बात का गुह्य रहस्य बताते हैं। तो इसीलिए जो भी सेवाएं हैं कभी कभी किनको ऐसा लगता है हमारे भाई बहनों को कि सूक्ष्म सेवाएं जो है वाणी की सेवाएं जो है वो श्रेष्ठ है और स्थूल सेवाएं थोड़ी उससे कम, पर वास्तव में ऐसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा आप किसी भी प्रकार की सेवा करो, सब सेवाएं एक जैसी है और सब में एक जैसे ही मार्क मिलते हैं, परंतु आप सेवा को सेवा समझ करके करो। तो अगर उस सेवा में हमारा स्वार्थ आ गया या मेरापन आ गया तो उसमें से मार्क्स कट हो जाते। सेवा है बाबा की, तो बाबा की सेवा होने के कारण जिसकी सेवा है तो नाम भी किसका होता है। देखो आज समझो किसी की दुकान है, कोई भी दुकान है, समझो रेडियो की, टीवी की या किसी भी चीज की दुकान, तो दुकान के ऊपर नाम किसका पड़ेगा? मकान जो मालिक होगा उसका नाम पड़ेगा ना। तो ये जो भी सेवाएं हैं ये किसकी? ईश्वर की सेवाएं, ईश्वरीय सेवा कहते हैं ना। तो जब सेवा उसकी है, कर्ता भी वो है, तो नाम भी किसका होगा? बाबा का ही नाम है ना। परंतु हम लोग कभी कभी विस्मृति के कारण तेरे को मेरे में परिवर्तन कर लेते। तो जिस समय तेरे को मेरे में परिवर्तन कर दिया तो मत्था भारी हो जाता, हमको ये करना है तो हमको करना है, तो उसमें क्या आ जाता है? अहम भाव आ जाता है। अहम भाव आने के कारण सफलता भी नहीं मिलती और भारीपन भी बहुत होता है, क्योंकि मुझे करना है तो मैं आत्मा कैसा करेगी, यथाशक्ति करेगी ना। परंतु ये हमें याद होगा कि ये सर्वशक्तिवान की सेवाएं हैं या सर्वशक्तिवान का कार्य है, उसके हम बच्चे हैं। अगर बाबा की याद हमें सदैव रहेगी तो बाबा अकेला नहीं आता है, सर्व शक्तियों को साथ में लेके आता। तो हम जो भी कुछ करते हैं वो यथाशक्ति करते हैं, और बाबा जो करता है वो सर्व शक्तियों से करता है, तो इसीलिए क्या होती है, उसमें सफलता मिलती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बड़ी अच्छी समझानी दी है कि वैसे भी दुनिया में देखेंगे तो आज अगर कोई किसी का पहचान वाला कोई मिनिस्टर होता है या कोई बड़ा आदमी होता है तो उसका कितना नाम का यूज कितना करते हैं, कहेंगे ये फलाना है ना, मेरे गांव का है, ये मिनिस्टर है, आपको जो भी काम कराना है हम करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आज मनुष्य मनुष्यों का नाम लेके अपने काम निकालते हैं, तुम बच्चे मेरा नाम लेकर के क्यों नहीं काम करते? अगर तुमको सदैव मेरा नाम याद रहे तो तुम्हारे कितने कार्य सफल हो जाएंगे। इसीलिए आप देखो देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है, जो इष्ट देव हैं, उनके हर कर्म की पूजा होगी। अभी देवताओं को भोग लग रहा है उसकी पूजा होगी, अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं उसकी पूजा होगी, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है उसकी पूजा होगी। तो उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि हम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि इन्होंने पूर्व जन्म में बाबा की याद में रह करके कार्य किया है, इसीलिए इनके जो कर्म है वो यादगार बन गए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि जब तुम बाबा की याद में रह के कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म भी यादगार बन जाते। तो इसीलिए जो भी तुम कर्म करो वो बाबा की याद के साथ कर्म करो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। हमारा हठ योग नहीं है, हमारी योगी जीवन है। जीवन ये एक दो घंटे की नहीं होती है। चार्ट लिखते हैं ना, हमने एक घंटा योग किया, दो घंटा योग किया। अच्छा, अगर हमने एक घंटा योग किया, दो घंटा योग किया, दो घंटा मैंने बाबा को याद किया, फिर 22 घंटा किसको याद किया? नहीं, ये कभी हमने अपने को चेक किया है कि दो घंटा तो बाबा को याद किया मैंने, बाकी 22 घंटा? देवदारियों को याद किया, किसको याद किया? हमारा जो योग है, बाबा तो योग अक्षर ही कट करता है। बाबा कहते हैं तुम भारी होते हो ना, योग अक्षर उसके बदले याद अक्षर याद रखो, बाबा की याद। तो हमारी जो जीवन है वो कर्म योगी जीवन है। जीवन ये दो चार घंटे की नहीं होती है, ये सदा होती। तो इसीलिए हमें बाबा की याद ये सदा रहनी चाहिए, निरंतर रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा बाबा है। आप लोग सब क्या कहते हैं? मेरा बाबा या तेरा बाबा? मेरा बाबा। गीत भी क्या गाते हो? मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, ऐसा तो नहीं गाते मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई कोई है क्या किसी का और कोई? तो देखो जब हम गीत गाते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, तो अपने को चेक करो सचमुच ऐसा है, मेरा एक शिव बाबा ही है या और भी कोई है? जब मेरा एक ही बाबा है, बाबा ही मेरा संसार है, मेरे संसार में और कोई है ही नहीं, तो बाबा के बिगर मुझे कोई याद आ ही नहीं सकता है। बाबा याद आएगा, बाबा का कर्तव्य याद आएगा, बाबा का परिवार याद आएगा, और कुछ भी मुझे याद नहीं आए। अगर हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, इसका मतलब अभी तक हमने बाबा को संसार नहीं बनाया। अभी सदैव बाबा की याद रहे और हमारी स्थिति सदा निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार की चिंता न हो, उसके लिए निश्चय का बल चाहिए, जिसको कहा जाता है एक बल एक भरोसा। आप देखेंगे शास्त्रों में जो पांडवों की विजय बताते हैं उसका आधार क्या है? एक बल एक भरोसा। उन्होंने सिर्फ एक को ही पकड़ा जिसके कारण उनकी जीत हो गई, और कौरवों ने इतनी अक्षौणी सेना पकड़ी परंतु क्या हुआ? उनका हार हो। तो है तो हमारी यादगार, तो हम देखे सचमुच मेरा एक बल एक भरोसा है। कुछ भी हो जाता है मेरे को, बाबा के बिगर और कोई व्यक्ति तो याद नहीं आता, और कहां मेरी बुद्धि तो नहीं जाती है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हमारी भोली भाली माताएं, कोई थोड़ा समझो नुकसान हो गया, कुछ हो गया, कभी ऐसे इतना पक्का निश्चय नहीं होता है, तो कभी गुरुओं गुसाइयों के पास, टिप्पणी देखने वालों के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते। भाई भी जाते हैं, जाकर के उनको बता के आएंगे कि क्या करे क्या नहीं करे, हाँ उनकी मदद लेवे, वो बोलेंगे पूजा करो पाठ करो फलाना करो टीरा करो, इसको निश्चय कहेंगे? जब हमारा एक ही बाबा है, तो मेरा एक बाबा है तो मेरा एक के ऊपर निश्चय है। निश्चय डगमग कब होता है? जब विपरीत परिस्थितियां होती, जब परिस्थिति ठीक है अच्छी है, परिस्थिति हिलाने वाली नहीं है तो नहीं हिलते, परंतु जब विपरीत परिस्थिति होती है उस समय पर हिल जाता, उसको निश्चय कैसा कहे? लौकिक में भी देखो बाप होता है, उसके ऊपर कैसी भी परिस्थिति हो गई, कुछ भी हो गए, कभी संशय थोड़ा ही आता है कि ये मेरा बाप है या नहीं? आता है क्या कभी? बाप माना बाप ना, तो अभी दो दिन पहले बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा बाप माना बाप ना, ये तुम्हारा बाप है ना। तो जब ही हमारा वो बाप है और हम उसके बच्चे हैं, हमारा उसके ऊपर पूरा पूरा निश्चय है, तो हमारे को सिवाय बाबा के और किसी का भी आधार नहीं चाहिए। बाबा हम बच्चों को निराधार बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ज्ञान मार्ग में हरेक आत्मा को इंडिविजुअल अपना पुरुषार्थ करना। भक्ति मार्ग में कहते थे पति करेगा तो पत्नी को उसका पुण्य मिलेगा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, एक करेगा तो दूसरे को पुण्य मिलेगा। या एक पाप करेगा तो दूसरे को भोगना पड़ेगा, नहीं, जो करेगा सो पाएगा, वो इस ड्रामा का नूंद है। तो हरेक को हमको यहाँ इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है, हरेक को अपनी अपना जो निश्चय है वो हमको पक्का करना है। क्या गायन किया जाता है? निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हमारा बाबा के ऊपर पूरा पूरा निश्चय है और हमें ये याद है सदैव कि मेरा साथी कौन है, मेरा साथी है सर्वशक्तिवान। क्या गायन करते हैं? जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे? आंधी और तूफान। तो जिस समय थोड़ा ऐसा हिलो ना, उस समय ये गीत याद करो, लिख के रखो अपने पास। जरा भी हलचल होवे ना संकल्पों में तो उस समय ये याद करना। हम गीत तो गाते हैं कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे माया के आंधी और तूफान। माया में ताकत है हिलाने की, वो यहाँ ही बोल रहे हैं बैठ के हाल में, या सदैव ये याद रहता है? जिसको सदैव याद रहता है हाथ ऊपर करो, देखो। अच्छा देखो कितना धीरे धीरे हाथ हो रहे ऊपर, क्या बात है हा? अच्छा, और जिनको नहीं याद रहता है वो हाथ ऊपर करो। फिर क्या किया जावे बताओ? जिन्होंने किसी में भी हाथ नहीं ऊपर किया है वो हाथ ऊपर करो। देखो अगर हमारे को सदैव बाबा याद नहीं रहता है तो थोड़ी भी अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो स्थिति क्या हो जाती है? डगमग हो जाती। इसीलिए हमारे को सदैव बाबा याद रहे। हम कहते तो हैं मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरी चीज कभी किसी को भूलती है? अरे नींद में भी नहीं भूलेगी, जागते हुए तो क्या, पर मेरी जो चीज होगी वो नींद में भी नहीं भूलेगी। छोटे बच्चे को भूलती है क्या? उसके हाथ में छोटा सा खिलौना होवे, आप उसको लेने की कोशिश करो, पकड़ के रखेगा, बोलेगा नहीं ये मेरा है। तो बच्चे को भी नहीं भूलता है, हम तो बड़े हैं ना, तो हमको बाबा कैसा भूल सकता है? तो मेरा बाबा है, जब हम कहते हैं मेरा कहना मना अधिकारी बनना। बाबा के ऊपर मेरा अधिकार है, बाबा है भोलानाथ। लेता क्या है हमारे से? क्या लेता है बाबा? ककपन लेता है और देता क्या है? विश्व की बादशाही देता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? भोलानाथ। है भोलानाथ परंतु बहुत पक्का सौदागर, बहुत पक्का सौदा करता है हमारे से। वो कहता है पहले जो भी तुम्हारे पास है कच्चर पट्टी उसको पहले मेरे को दियो। जब तक तुम वो मेरे को नहीं देगे तब तक मेरे से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ भी है तुम्हारे पास वो भी हम छुपा के रखे, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसा कैसे चलेगा? तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाथ खाली करना पड़ेगा ना। हम कहते हैं ना हम बाबा के आगे सरेंडर हुए। सरेंडर हुए माना क्या किया हमने? अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण किया ना। तो जब ही हमने सब कुछ ईश्वर अर्पण किया, तन मन धन, आप प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु आप अपने को क्या समझ के चलते हो? समर्पण समझ के चलते हो ना, कि हम ईश्वर के समर्पण हुए हैं, हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है। हमारे आगे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, ब्रह्मा बाबा को देख के अनेक बच्चों ने समर्पण किया। तो हमने जो समर्पण किया और वो जो समर्पण है उसमें अंतर है या एक ही है? अंतर है या एक है? अंतर है तो फिर प्राप्ति में भी क्या होगा? अंतर हो जाएगा ना। फिर कहेंगे बाबा ये क्या है, आप हमारे को शक्ति देना, आप हमारे को मदद करना। बाबा कहते हैं जब तुम अधिकारी आत्मा है तो भीख क्यों मांग रहे हो? भक्ति मार्ग में भीख मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में मांगने की जरूरत है? अभी सीधा नहीं मांगते हैं, समझा? पहले भक्ति मार्ग में तो सीधा मांगते थे, भगवान के आगे बैठेंगे तो लंबी लिस्ट लेके बैठते थे, शांति दो, आनंद दो, सुख दो, शक्ति दो, धन दो, पदार्थ दो, संतान दो, दो 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 करते थे। अभी ऐसा नहीं करते हैं, अभी फिर क्या कहते हैं? रायल भाषा में कहते वो ही है, पर रायल भाषा में कहते हैं बाबा आप तो सर्वशक्तिवान है ना, आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? अरे बाबा कहता है मैं क्या मनुष्य हूं क्या? मनुष्य भूलता है, मैं तो सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर हूं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मैं भूलता हूं क्या जो तुम मेरे को याद दिलाते? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं नहीं करता हूं क्या? मैं मदद तुम बच्चों को हर पल हर क्षण करता हूं, परंतु मदद लेने के तुम्हें पात्र बनना है। अगर तुम्हारे में पात्रता है मदद लेने की तो तुमको मदद मिलेगी। मदद उससे कौन ले सकता है जो उसके साथ सदैव सच्चा बन के चलता है, जो उसका आज्ञाकारी बन के चलता है, उसको वो मदद करता है। परंतु अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके साथ सच्चे बन करके नहीं चलेंगे, तो क्यों मदद करेगा हमारे? आज आप लोग भी देखो रहते हैं, बच्चों सब बच्चों के साथ माता पिता का प्यार होता है, पर जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उससे क्या होता है? उससे एक्स्ट्रा प्यार होता है ना, कहेंगे ये मेरा बच्चा ना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आज्ञाओं पर चलता है। तो बाबा का भी सब बच्चों के साथ प्यार है। उसकी निशानी क्या है आपको मालूम है ना? उसकी निशानी है वैजयंती माला। आप जो माला फेरते हैं ना भक्ति मार्ग में, वो उसी की निशानी है। आप देखो जो फर्स्ट नंबर का मणका है वो भी फूल के नजदीक है, और जो लास्ट नंबर का मणका है वो भी फूल के नजदीक। तो बाबा का सबके साथ प्यार हुआ या नहीं? तो उसका सबके साथ प्यार है, परंतु अगर सचमुच वो कहता है मेरे को वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो मेरे समान कर्तव्य करते। देखो भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे, भगवान से मदद मांगते थे, भगवान मदद करो। अभी भगवान कहता है बच्चे तुम मेरे को मदद करो। देखो कितना बड़ा भाग्य है, समझते हो कितना बड़ा भाग्य है हमारा? भगवान बैठ करके हम बच्चों से मदद मांगे, उसको कौन सी मदद चाहिए? पवित्रता की मदद। उसको दो बातों की मदद चाहिए, एक चाहिए पवित्रता की मदद, दूसरी चाहिए अव्यभिचारी याद की मदद। उसको और कुछ नहीं चाहिए हमारा। हम आत्माएं जितना जितना पवित्र बनती है, जितना जितना अव्यभिचारी याद में रहती है, उतना उतना इस सृष्टि का वातावरण बदली होता है। हमारा बाप पतित पावन है, हमें आके वो मास्टर पतित पावन बनाता। उसके द्वारा हम आत्माएं पतित से पावन बनती है उसको याद करके, और हमारे याद बल से ये पांच तत्व पतित से पावन बनते। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है निरंतर मुझे याद करो, अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करो? अगर तुम निरंतर याद करेंगे तो ये जो पांच तत्व है इनको ये वाइब्रेशन मिलेंगे, तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे, शक्ति के वाइब्रेशन मिलेंगे। ये पांच तत्व चेंज होते जाएंगे, तुम्हारे काम में आने वाले सत्व प्रधान बन के, परंतु ये चेंज करना तुम्हारा काम है। देखो अंत के समय ये पांच तत्व बहुत घमसान करने वाले, बाबा ने बताया ना, ये अभी पांच तत्व बहुत बहुत नाराज हो गए। अभी अभी कल ही समाचार आया था, बॉम्बे में इतना समुद्र उछला है जो रोडों के ऊपर पानी आ गया। बहुत नाराज हुआ है अभी। क्यों नाराज तो होगा ना? मनुष्यों ने पांच तत्वों को कितना पीड़ा है, कितनी तकलीफ दी है। आज आप किसी व्यक्ति को तंग करो तो आखिर वो क्या होता है? वो भी तंग हो जाता है कि तुम मेरे को तंग करते हैं ना, मैं अभी तंग तेरा बदला लेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। तो ये पांच तत्व भी अभी इतने तंग हो गए हैं जो ये क्या करेंगे, ये भी बदला लेंगे। परंतु ये जब भी बदला लेंगे, ये सब पांचों के पांचों तत्व जब ही नाचेंगे, क्योंकि शिव की बारात निकलती है ना। शिव की बारात देखी है आपने? किस किस ने देखी है शिव की बारात? देखी आप लोगों ने? कभी देखी आपने? हाँ, ये तो आप बैठे हैं, ये शिव की बारात है ऐसा? ये शिव की बारात, इसीलिए देखो शिव की बारात में कौन बताते हैं? लंगड़े लूले काने दूत भूत, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, शिव और शंकर को एक कर दिया, शंकर को बैल के ऊपर बिठा दिया, उसकी बारात निकल रही है और उसके पीछे दूत भूत ये सारे लगा दिए। तो ये जो शिव की बारात है सबको साथ में लेके जाता है, किसी को भी छोड़ता नहीं। तो जब उसकी बारात निकलेगी, आप क्या समझते हैं बारात निकलती तभी कितने फटाके तोड़ते हैं, तो उस समय फटाके फूटेंगे ना, हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम ये क्या है, ठगाटक ठगाटक होगा। परंतु उसके लिए क्या चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि जब भी बम का ठका होवे तभी हमारे हार्ट का ठका नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर हमारे में वो सहन शक्ति नहीं है तो एक तरफ उधर बम फटेगा, इधर हमारा हार्ट फटेगा। तो बाबा कहता है कि तुम खुद को मजबूत करो, विनाश विनाश तो करते हो, विनाश कभी होगा, अरे उसका इंतजार क्यों कर रहे, उसका इंतजाम तो करो। विनाश की सीन सीनरियां देखने को तुम्हारे में ताकत है। एक बार हमारे पास स्पार की मीटिंग चल रही थी, तो उस समय पर ये बात निकली कि ये पांच तत्व, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पांच तत्व धरणीकंप होता है, बाढ़ आती है, अभी बाढ़ आवे सारी दुनिया को बहा के ले जावे, हमको भी बहा के ले जावे, उनमें और हमारे में अंतर क्या रहा ये तो बता। धरणीकंप हुआ, औरों को पेट में उसने दबा दिया, हमारे को भी दबा दिया, फायदा क्या हो। तो इन्होंने एक प्रश्न निकाला कि अगर समझो धरणीकंप होता है और धरणीकंप में अगर धरती फटती है और आप उसके अंदर जाते हैं तो आप उस समय क्या करेंगे। तो सबने अपने अपने उपाय बताए क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर मेरे से पूछा कि अगर धरणी फटे और आप अंदर जाएंगे तो आप क्या करेंगे। मैं बोला उसकी क्या ताकत है हमको अंदर लेने की, वो हमको कैसा अपने पेट में ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि हम उसको योग का दान देते। बाबा क्यों कहता है पांच तत्वों को योग का दान दो, क्योंकि अंत के समय जब ये सब बहुत अपना धमाल मचाएंगे तो उस समय अभी आपने उसको योग का दान दिया होगा, उसकी सेवा की होगी, तो अंत के समय ये प्रकृति आपकी सेवा करेगी, आपको बचाएगी। इसकी ताकत नहीं है आपको आपका बाल भी बांका कर सके। तो इतना निश्चय हमारे को होवे कब होगा, जब हम इसकी सेवा करेंगे। इसके ऊपर अव्यक्त बाबा ने बड़ा अच्छी मिसाल दिया था। बाबा ने कहा देखो अभी ये कोई हॉल है, तुम लोग क्या करते हो, जिस समय तुमको प्रदर्शनी करनी है मेला करना है तभी हॉल वाले ग्राउंड वाले को जाके उसको उस समय बाबा का परिचय देंगे, उसको समझाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे को फ्री चाहिए उस स्थान, इसीलिए जाते हो ना। शुरू शुरू में देखो अभी तो फिर हम लोग पैसा देते और लेते हैं, पहले में हम सब फुकट में ही करते थे, हम वो बोलते थे आप क्या करेंगे, हम बोलते हैं देखो बाबा हम तो मफतलाल ग्रुप के लोग हैं, हमारे को सब मफत ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो संख्या बहुत कम थी, इतना तो कुछ था नहीं, तो इसीलिए क्या करते थे उस समय अपनी योग की और ज्ञान की शक्ति को यूज करते, कोई भी हाल लेना होगा ना तो उनको समझाते थे, फिर वो हमारे को बहुत कंसेशन में देते थे, कभी फ्री देते थे कभी कंसेशन में देते थे। समझो 5,000 रुपया किराया होगा तो हमारे से वो 500 ले गए 1,000 ले गए, हम बड़े खुश होके साकार बाबा को लिख के भेजते थे, बाबा हमने फलानी जगह पर हाल किया, हमारे को बहुत कंसेशन मिला, इतना इतना हमारे को अभी सिर्फ 500 ही देना है, उसने 5,000 रुपये जो थे उसके बदले 500 कर दिया। बाबा मालूम है क्या करता था, बाबा रिटर्न में हमको लिख के भेजता था तुम्हारे में है ज्ञान की शक्ति नहीं है। अरे हम तो समझा बाबा हमको शाबाश देगा, और ही ऊपर से मिलता था, तुम्हारे में ज्ञान की शक्ति नहीं है, तुम्हारे में योग का बल नहीं है, तुम्हारे से वो 500 रुपया लेता है, वो तो तुम्हारे को फ्री करके देना चाहिए उसे, समझा, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे, विश्व के पिता के बच्चे हैं। शुरू शुरू की आपको एक बात बताती, मैं शुरू शुरू में कराची में जब चारों तरफ आप लोगों को हिस्ट्री तो मालूम है ना अपने यज्ञ की, कितनी धमाल हुई थी, फॉरेन के पेपरों में भी आया था कि एक कोई जवारी है, लखीराज बाबू है, उसको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 500 मिल गई और बाकी है लेनी। अमेरिका के पेपरों में आता, चारों तरफ इतना आवाज था, बात मत पूछो। बाबा कभी कभी हंसता था, साकार बाबा कहता था, ये वाट जान दे बामन फाता, ये तो इतना रास्ते से चल रहा था ब्रह्मा, दादा रास्ते से चल रहा था, इसका इतना मान था। ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, बाबा का बड़ा मान था। किसके घर में कुछ भी होता था, उनके धंधे में कुछ भी होता था, अशांति होती थी, वो आके बाबा के पास बैठते थे पेड़ी के ऊपर। बाबा पूछेगा कुछ काम है, नहीं दादा हम आपके पास आके बैठते ना, हमको बड़ी शांति मिलती। कोई भी उनका कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा तो हल करके देता था बाबा, तो इतना ही इसको मानते थे। और अचानक क्या हो गया, शिव बाबा ने प्रवेश किया, पवित्रता के ऊपर झगड़ा लगा। बाबा आके सब झगड़े मिटाता है, पर एक बार पवित्रता का जोरदार झगड़ा लगा देता। शुरू में तो झगड़ा होता है ना, एक पहिया चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, किट 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 होगी। तो उसके बाद सारे झगड़े आधा कल्प के लिए बंद, पर एक बार ये पवित्रता का झगड़ा कल्प में एक ही बारी लगता। उस दिन भी बाबा बोले ना, ये दूसरे सत्संग में थोड़ा ही पवित्रता का झगड़ा होता है, वहां तुम पवित्र बनो या अपवित्र उसका क्या जावे, गुरु का क्या जावे इसमें। यहाँ तो बाबा को सब आत्माओं को साथ में लेके जाना है। तो जो चारों तरफ इतनी बदनामी हो गई थी, तो देखो ड्रामा में ऐसा था, अभी चारों तरफ नाम बालक ऐसा होगा उसके लिए ड्रामा, ड्रामा तो कल्याणकारी है ना। तो रोज क्या करते थे, कराची में बाबा रहता था बाबा भवन में क्लिफ्टन पर समुद्र के नजदीक, और सब माताएं बहने रहती थी मम्मा भवन, तो उनको रोज लेकर के जाते थे बस में, बस भर करके। और बस कौन चलाती थी उस समय, भाई तो इतने थे नहीं, ब्रिजेंद्र दादी बस चलाती थी। बस चला करके आप हिस्ट्री हाल में देखो, बाबा ने सब काम अपने हाथ से करना सिखाया, और निर्मल शांता दादी बस के नीचे जाके मैकेनिक का काम कर रहे, सब काम करना सिखाया बाबा ने, सब सब सेवा ये होती है। तो ये क्या करती थी, बस चला के ले जाती थी सबको भर के। तो एक दिन क्या हुआ, ठंडी के दिन थे, बहुत फॉगी थी, तो ये बस ब्रिज पर से, बस ऐसा थोड़ा ऊंचाई थी ब्रिज जैसा था, वहां से बस लेके जा रही थी, तो इसकी बस हो गई स्लिप, स्लिप हो गई बस। तो इनको मालूम नहीं था, इसने ब्रेक दे दिया, स्लिप होने के बाद ब्रेक दे दिया, तो बस हो गई उल्टी। मम्मा इसके बाजू में सीट पर बैठी हुई थी, वो छलांग लगा के जैसा मम्मा बाहर बारी में से बारी खुल गई और मम्मा बाहर जाके गिरी, और जो दूसरे अंदर बैठे हुए थे, किसी को कुछ लगा किसी को कुछ लगा, खून बह रहे सभी के, मम्मा को कुछ नहीं लगा, इसको भी कुछ नहीं लगा, ड्राइवर को कुछ नहीं लगा, और सबको कुछ ना कुछ लगा। एक बहन थी राधे बहन, अभी भी है बेंगलोर में, उसका हाथ बस के नीचे आ गया, परंतु ये सभी ओम की धुनी लगा रहे हैं, और वो उसका हाथ नीचे आ गया, उस हाथ सारा चिथ गया, बस ऊपर गिरेगी तो क्या हालत होगी, पर वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रही। तो इसने कहा राधे तुम निकलो ना, बोला मैं निकलूं कैसा, ये बस उठाओ मैं तभी निकलेगी, मेरा हाथ नीचे आया। फिर जब उसको उसको निकाला वहां से, उसका हाथ काटना पड़ा, परंतु फिर भी आवाज नहीं। देखो बाबा को कैसा कराना होता है, करण करावन हर स्वामी, कैसी मदद करता है। फिर उसी समय इधर उधर से, क्योंकि लोग तो सवेरे सवेरे कौन आएगा इतना जल्दी, वो दूध वाले कोई ब्रेड वाले ऐसे रास्ते में से जाते हैं ना साइकिलों पर, वो लोग इधर उधर आवाज करके सब लोगों को इकट्ठा किया, वो बस निकाली, एम्बुलेंस मंगाई और इनको सबको हॉस्पिटल में लेके गए। परंतु किसी के आंख में पानी नहीं, किसी के मुख से आवाज नहीं, सभी ओम की धुनी लगा रहे। तो सारा सिंध इनको देखने को आया कि देखे तो सही इन लोगों में क्या जादू है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और ये लोग इतने आराम से बैठे और धुनी लगा रहे। उस समय अभी इतना इमरजेंसी होने के बाद वो तो एनेस्थेसिया भी नहीं देते, ऐसा ही सिलाई करते, जख्म जल्दी जल्दी सिलाई करने पड़ते है ना, तो भी किसी के मुख से आवाज नहीं। तो क्या हुआ, अभी ये सारा हो गया और फिर एक्सीडेंट हुआ ब्रिजेंद्रा दादी से, और ये दादा की लौकिक में बहू, तो इसके ऊपर तो लोगों को ऐसा लगता है जानबूझ के बस गिराई, क्या क्या किया इसने, तो केस हो गया, पुलिस केस हो जाता है ना, तो पुलिस केस हुआ तो सब टोटल फॉरेन और भारत सब पेपरों में आ गया, फॉरेन के पेपरों में आ गया वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी बस ड्राइवर बड़े अक्षरों और ब्रैकेट में लिखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट थोड़ा ब्रैकेट में लिखा छोटा। तो जब ये केस चला तो इनको बुलाया कोर्ट में, तो ये गई तो जो जज था उसको बहुत ये लगा कि इतना बहादुरी किया, इसके पास लाइसेंस थोड़ा ही था, उस समय तो कारें भी कोई नहीं चलाता था, इसके पास कार का लाइसेंस था और इसने बस चलाया, बड़ी गलती ये किया, तो कोई हिम्मत ही नहीं करे बस चलाने की लेडी, 50 लोगों को लेके जाना क्या मासी का घर है क्या। तो इनको जब भी बुलाया तो जज ने कहा नहीं इनको यहाँ पिंजरे में नहीं खड़ा करो, इनको मेरे कैबिन में बुलाओ। तो उसको कैबिन में बुलाया तो कहा देखो बहन आपकी बहादुरी को हमको इनाम देना चाहिए, क्योंकि आपने इतना गट्स करके आपने इतनी बड़ी बस चलाई, परंतु आपने भूल क्या किया, कार के लाइसेंस पर आपने बस चलाई, इसीलिए हमारे हाथ बांधे गए, हमको आपको सजा मतलब दंड देना पड़ेगा। तो उसने एक रुपये दंड लगाया। तो ये ब्रिजेंद्रा दादी बहुत खुश हो गई, एक ही रुपये दंड, तो भाग भाग के आई बाबा के पास, बाबा को बोला बाबा वो उसने मेरे को अपने कैबिन में बुलाया और सिर्फ एक रुपये दंड लगाया। बाबा बड़ा सीरियस हो गया सुन, बाबा ने कहा शेम, अरे तुम विश्व के पिता की बच्ची और तेरे को उसने दंड दिया, अभी एक रुपया लगावे या लाख रुपए लगावे उसकी वैल्यू नहीं, दंड की बात, तेरे को इनाम थोड़ा ही मिला है। तो देखो बाबा कैसा सिखाता है। तो बाबा ने उसको बोला कि तुम बच्चों को दंड नहीं होना चाहिए, जो बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है ना, बच्चे तुम्हें अपने विक्रम विनाश करके पास विथ ऑनर होके जाना है, धर्मराज का एक फटका भी तुमको खाना नहीं पड़े। उस समय बाप को क्या लगेगा, तुम बाप के सामने धर्मराज के अगर डंडे खाएंगे तो बाप को क्या फीलिंग हो, इसीलिए तुम बच्चों को ऐसा प्रकृति जीत और माया जीत बन करके बताना, ऐसा नहीं समझो, कोई कोई ऐसा समझते हैं क्या हो गया अभी जाके दास दासी बना तो क्या होने वाला है, वहां तो कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं बने अब सारे थोड़े ही राजा बनेंगे, सारे राजा बनेंगे तो काम कैसा चलेगा भाई, तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, तो इसीलिए मेरे को ही पानी भरना है। तो जिनको पुरुषार्थ नहीं करना होता है ना वो ऐसी ऐसी बातें करते। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा ना, ड्रामा को सीधा घुमाने के बजाय उल्टा घुमाते, क्योंकि ये सृष्टि चक्कर है ना, आप देखो सृष्टि चक्कर को ऐसा घुमाना है उसके बदले ऐसा घुमाते, ऐसा घुमाएंगे आप तो माया का गले काटेंगे, ऐसा घुमाएंगे तो आपका गला कटेगा, तो उल्टा घुमा लेते हैं। 5000 बरस पहले भी कभी कभी बोलते हैं हमारे भाई बहन, 5000 बरस पहले भी ऐसा ही हुआ होगा ना, हमारा पार्ट ही ऐसा है, बाबा ने इसके लिए ये ज्ञान नहीं दिया, पुरुषार्थहीन बनने के लिए ज्ञान नहीं दिया है, हमें ये ड्रामा का ज्ञान इसलिए दिया है कि कैसी भी परिस्थिति होवे आप अपनी स्थिति को अच्छा रखो। क्यों स्थिति को अच्छा रखते हैं, क्योंकि जब हम ड्रामा को याद करते हैं तो कैसी भी परिस्थिति होगी उसको हम स्वीकार कर लेते। आप देखो शिव बाबा करेंगे ना ऐसे हलचल के समय पर बाबा नहीं याद आएगा, पर ड्रामा करेंगे तो आप अचल हो जाएंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा, फिर बाबा को याद करो तो आपको सुख मिल जाएगा। तो इसीलिए ड्रामा को यथार्थ रीति से जान करके हमारे को क्या करना है, उसके ऊपर चलना आना चाहिए, ये हमारा पट्टा है, जैसा ट्रेन का पट्टा होता है ना, ट्रेन अगर पट्टे पर चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, पट्टा छोड़ के चलेगी तो एक्सीडेंट होगा ना। तो हम अगर ड्रामा का पट्टा छोड़ के चलते हैं तो माया के एक्सीडेंट होते। कभी कभी कोई क्या करते हैं, ड्रामा ड्रामा भी बोलते रहेंगे, रोते भी रहेंगे और ड्रामा भी बोलते हैं, हमारे ड्रामा में पार्ट ऐसा है, पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट कैसा है। अरे ड्रामा कल्याणकारी है, हमारे बाप ने बनाया हुआ है। ऐसा कोई बाप होगा जो अपने बच्चे का पार्ट खराब बनाएगा? तो जब ये मेरे को निश्चय है कि ये ड्रामा जो है इसका रचयिता कौन, जब ये बुद्धि में रहेगा तो क्या होगा, हमारे को कभी भी हमारी कैसी भी परिस्थिति होगी, हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आएगी। हलचल में क्यों आती है स्थिति, क्योंकि हम परिस्थिति को देखते रहते हैं खड़े होकर के सामने। बाबा कहता है तुम अपनी ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाओ, फिर ये परिस्थिति तुम्हारे को क्या लगेगा, कागज का शेर लगेगा, ये माया परिस्थिति तुम्हारे को एकदम पहाड़ नहीं परंतु वो रुई लगेगी, राई भी नहीं लगेगी। परिस्थिति के ऊपर तुम्हारी विजय हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने हमको कितना ऊंचा बनाया, कितना श्रेष्ठ बनाया। उस दिन देखो बाबा की मुरली में था बच्चे, ये जो विराट रूप का चित्र है, विराट रूप का चित्र है ना, ये वैरायटी ड्रामा का ही चित्र है, ये जो भक्ति मार्ग में बताते हैं विराट रूप का चित्र, इसमें क्या करते हैं, बाबा ने कहा देखो वैश्यों को कहां बताते हैं, ब्राह्मणों को बताते हैं, वो हम अभी बताते हैं, ब्राह्मणों को चोटी बताते हैं, देवताओं को तो उसमें बताया उन्होंने विराट रूप में, देवताओं को मुख बताया, क्षत्रियों को भुजाएं बताया, वैष्णवों को क्या किया है पेट में बताया, शूद्रों को क्या किया है पैर में बताया, अभी हमारे को हमने फिर बाबा ने आके क्या ऐड किया, चोटी में कौन है, तुम ब्राह्मण है, एकदम हमको ऊपर चढ़ा दी। तो बाबा ने कहा ये जो वैश्यों को पेट में बताते हैं, क्योंकि ये द्वापर से लेके पेट के पुजारी बन जाते, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में तो हम अपनी प्रलोभन खाते, परंतु जब द्वापर युग आता है तो कमाओ और खाओ, मतलब पुरुषार्थ करो और प्रलोभन पाओ, ऐसा है ना। तो इसीलिए पेट के पुजारी बनते, इसीलिए क्या है इनको पेट में बताते। तो इसके ऊपर हम विचार किया कि ये ब्राह्मणों को चोटी जो हम बताते हैं, चोटी मानो ऊंचे से ऊंचा, हमारा बाबा ऊंचा है तो हम बच्चों को भी क्या करता है, सिर माथे पर रखता है, हमको भी ऊंचा चढ़ाता। अभी देवताओं को मुख में जो बताते हैं, सूर्यवंशियों को मुख में क्यों बताया जाता है, आप देखो इस मुख के अंदर ही सब कुछ है, आंखें कान मुख, ठीक है। जिन्होंने इसके ऊपर इन कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया वो सूर्यवंशी में आ गए, मुख में आ गए, और जिन्होंने माया के साथ युद्ध करते रहे, युद्ध तो भुजाओं से किया जाता है, जो अंत तक माया के साथ युद्ध करते रहे वो कहां चले गए, चंद्रवंशी में, वो चले गए भुजाओं, और वो पेट के पुजारी चले गए पेट में वैष्णव, और क्षुद्र क्या हो गया, हम सभी की हालत आखिर क्या हो गई, पट में गिर गए हम लोग। पैर हमेशा कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं ना, पैर जमीन पर होते हैं, नीचे मिट्टी में होते हैं ना। तो हम सभी ने अपने को क्या समझ लिया, मिट्टी बना लिया ना, देह समझ ली। बाबा ने आकर के हमको मिट्टी में से उठा के देह अभिमान से उठा करके एकदम चोटी पर चढ़ा दिया, आत्मा अभिमानी बना दिया। तो बाबा एक एक महावाक्य का क्या करता है, हम बच्चों को अर्थ बताते, कितने रहस्य बताता है। तो जितना जितना हम बाबा का जो ये खजाना है अविनाशी ज्ञान खजाना, इसको जितना अच्छी रीत समझते जाते हैं, उसको हजम करते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों को रोज भोजन खिलाता है, उसको जितना जितना हम हजम करते हैं, अपना बनाते हैं, उतना उतना हम आत्माएं शक्तिशाली बनते जाते हैं, जिस शक्ति के आधार पर ही हम क्या होते हैं, माया जीत बन सकते। परंतु अगर हम कथा के माफिक सुना और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होता। निश्चय की एक बात बताती आप लोग, एक बल एक भरोसे की बात चल रही थी। देखो हमारा ये जो ब्राह्मण परिवार है, इतना परिवार जो बड़ा है हमारा, इसका कारण है बाबा शिव बाबा तो है ही और ब्रह्मा बाप भी है, पर ब्रह्मा बाप और शिव बाप के साथ साथ जो फाउंडर बने हैं, जो हमारी दादियां हैं, उन लोगों ने जो तपस्या किया, जो त्याग किया, उसके कारण आज हम देखते हैं इतने सब ब्राह्मण कितनी बड़ी संख्या में तैयार हो। तो निश्चय की बात चल रही थी, हमारी पुष्प शांता दादी थी, तो पुष्प शांता दादी, क्योंकि जो भी शुरू शुरू किया है, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो सब बड़े घर की आई हुई थी। इनका ये पहले जापान में रहती थी, इसको जापान की रानी बोलते थे, मखमल की रानी, क्योंकि इनका जो लौकिक पति था वो मखमल का धंधा करता था। तो ये हमेशा कपड़े भी मखमल के पहनेगी, घर में जो उनके गालीचे वगैरह होते थे वो भी मखमल के होते थे, और ये ऐसे गिनियां लगा के उसके इसके वो ये होता था, ये जप्पा पहनती थी ना, उसको गिनियां लगाई हुई होती थी सोने की। तो पुष्प शांता दादी हम लोगों को बताती थी, देखो निश्चय क्या है, कहा जब ही मैं आई, इनके चार बच्चे थे छोटे छोटे, छोटी वाली तो शायद 2 बरस की थी, छोटी एकदम, तो 4 बच्चे इनके थे। तो इनको लगन लग गई बहुत, इनका लौकिक पति तो जापान में ही था, ये सिंध में आ गई थी, तो भी तो इसको बहुत खेंच होती थी जाने की। फिर जब ही पति आया तो उसने बहुत विघन डाले पवित्रता के लिए, तो इसने कहा मैं तो जाएगी, तुमको जो करना है वो करो। फिर उसके बाद इसने एक दिन क्या किया, सब इसके पास जो भी जेवरात थे सब कुछ ये लेकर के और बाबा के पास चली गई। बाबा के पास इसको वैसे थोड़ी इनका हाइट ज्यादा नहीं थी, थोड़ी कम थी, इनको गुड्डी बोलते थे प्रेम से सब। तो जाके बाबा को सब जो पैरे पर थी उसने बताया, बाबा गुड्डी आई है, गुड्डी आई है, और घर से आई है, छोड़ के आई है, बोला सब। तो बाबा ने कहा उसको वापस करो, मेरे को उससे नहीं मिलना है। बोला बाबा वो भाग करके आई है घर से। बाबा ने कहा नहीं, मेरे को उससे मिलना नहीं है, अभी उसका समय नहीं आया, मेरे को नहीं मिलना। बाबा उसको मिला ही नहीं बिचारी, फिर वापस घर गई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वापस आई, फिर उसके जो भी गहने का मतलब गहने वहने पड़े थे वो थे उसके पास, फिर वापस आई। बाबा ने कहा नहीं अभी इसका समय नहीं, इसको वापस भेजो। वो बोला मैं ऐसा कैसा, मैं घर से भाग करके आई, मैं दूसरी बारी आई, मेरे को निकलने नहीं देते, इतने ताले लगा के रखते और मेरे को ऐसा वापस कैसा क्या करते हैं। बाबा ने कहा नहीं अभी बाबा उससे मिलेगा नहीं और उसको इधर रहना नहीं। फिर उसको वापस किया। फिर उसके बाद वो तीसरी बारी आई, फिर वो अपने सब गहने वहने सब उतार करके आई, जो कपड़े पड़े हुए थे वही उसके कपड़े थे। फिर आने के बाद थोड़े दिन के बाद जब आई तो बाबा ने बाबा को बताया, बाबा वो गुड्डी आई है। बाबा ने कहा बुलाओ बच्ची को बुलाओ, फिर इसको रख लिया। तो वो हमको बताती थी, देखो आप लोगों को अगर किसी को ऐसा 3-3 बारी वापस करे तो कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा। अरे बाबा नहीं मिलता है, इतने बच्चों को छोड़ के आई, घर को छोड़ के आई, इतना धन पदार्थ छोड़ के आई, तो भी बाबा बोला नहीं वापस करो उसको, वापस करो। तो इतना पक्का फाउंडेशन, निश्चय माना निश्चय, टुकरा दो या प्यार करो तेरा दर हम कभी नहीं छोड़े। नहीं तो क्या होता है, कहा जाता है ठूंठ लगी सायरी बगी, जरा सा कुछ हो गया गए रूठ गए। अरे क्या हो गया तुमको भाई, क्या फलाने ने ऐसा बोला, फलानी ने ऐसा किया, इसलिए हम क्लास में नहीं आते। अरे भाई ये भी कोई निश्चय होता है क्या? हाँ निश्चय माना निश्चय, बाप माना बाप, घर माना घर। तो जब ही बाबा ने हमको अपना बनाया और हमारे को निश्चय है, फिर कुछ भी बात होती है तो क्या करना है, निश्चय पक्का रहना चाहिए ना। विजय किसके आधार पर है? निश्चय के आधार पर ही विजय। वो बहुत मजे से सुनाती थी बात। तो बोला जिस समय वो निकली ना, उसकी लड़की ने भी बहुत अच्छा लिख करके, लौकिक बच्ची ने, देखो इनके त्याग का कितना बड़ा भाग्य अनेक आत्माओं को मिला। आज इतना बड़ा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, उनके लौकिक जमाई ने बना के दी। ये ग्लोबल हॉस्पिटल है ना यहाँ, कूबा ने बनाया है ना, ये कूबा और वाटुमल माना उसके जमाई का बाप, तो उसने बना के दिया। कितने लोगों का भाग्य बनाया इन, अनेकों का तो बनाया पर लौकिक वालों का भी सबका भाग्य बना। इसके पीछे भाग्य बनाने का पीछे क्या आप देखेंगे, उसका बीज क्या, त्याग। इन्होंने जो त्याग किया उससे खुद का तो भाग्य बना पर अनेकों का भाग्य बना। तो इसीलिए ऐसा पक्का निश्चय, कुछ भी हो जावे परंतु हम बाबा का दर कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा का घर कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा पक्का निश्चय है सबको। हाँ है, देखो हाथ ऊपर करो निश्चय वाले, इसमें तो सब पास हो गए आप लोग, खुश कर दिया एकदम हमको। चलो अच्छा भाई, ओम शांति।
लेकिन हम तो जरा जरा सी बात में रूठ जाते हैं, अगर हमें जरा सा पूछा ना जाए, जरा सी मान शान ना मिले। अरे हम तो इतनी सेवा करते हैं, नहीं सचमुच जो पुराणों में जो चीज है वो ये है, त्याग तपस्या। पहले इतनी टोलियां बनती थी क्या संतोष दीदी? हम लोग भी जब यज्ञ में आए हैं, ये इतना सिंपल भोजन, कोई टोलियां इतनी कुछ नहीं था।
देखो हम जब ये मधुबन में आते थे, शशि बहन आपको याद होगा, यहाँ हमारे को स्नान करने के लिए बाल्टी नहीं मिलती, आप इधर आओ ना, इधर आओ जरा, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो यहाँ ना बाल्टी होती थी, ना कोई मग्गा होता था, ना खाने के लिए थालियाँ होती थी। हम अपनी थाली कटोरा बाल्टी और बिस्तरा, इतना बड़ा बड़ा बिस्तरा, यहाँ ठंडी भी बहुत होती थी भाई, अभी तो लोग बढ़ गए तो ठंडी कम होगी, नहीं तो ठंडी के दिनों में इतनी ठंडी होती थी। हम बम्बई में रहने वाले समझो, बार बार ऐसे, वहां तो कभी ठंडी होती नहीं, साउथ में रहने वाले, इतने बड़े बड़े बिस्तरे हम इकट्ठे करके लेके आते थे। अभी स्टेशन पर आप बताओ, 50 लोगों की अगर पार्टी आएगी, 50 बाल्टियां, 50 बिस्तरे और इतने इतने बर्तन और सब कुछ, इतना इतना पेटियां, ट्रंक होते थे इसके, लोहे के ट्रंक, उसमें कपड़े लेके आते थे। फिर इतना सारा देख के तो लोग बोलते थे, हम लोग जब भी आते थे लोग बोलते थे, ये बिचारी ब्रह्मा कुमारियों का ना घर बार है ही नहीं, ये जिधर जाती अपना सामान उठा करके जाती, क्योंकि बाल्टी लोटा सब लेके जावे। अभी तो धीरे धीरे बाबा के घर में इतने साधन हो गए हैं सारे, तो पहले सोगा और शुरू में लंदन में गए तभी जानकी दादी बाल्टी लेके गई थी। सब लेके जाते थे, वंडरफुल था एकदम, मजा आता, बहुत मजा आता था उसमें, सारा सामान ढो करके जाते थे मजे से, बुड्ढों का भी सामान हम लोग लेके जाते थे। वो भी दिन बड़े प्यारे थे, ये भी बहुत प्यारे, परंतु अपनी साधना नहीं टूटनी चाहिए, साधन कितने भी होने दो परंतु हमारी जो साधना है वो साधना तो हमको ठीक मजबूत रहना है इसमें बहुत, तभी आनंद है, नहीं तो आनंद नहीं।
आगे तो हम यही कहते थे ना, ब्रह्मा कुमारियों के, ब्रह्मा कुमारी के चार अलंकार, जैसे विष्णु के चार अलंकार हैं, एक अपना ट्रंक अटैची, एक बाल्टी, एक टोकरी जिसमें हम लोग अपना टिफिन वगैरह 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 ये रखते थे, और एक बिस्तर। 82 में भी जब संतोष दीदी मैं जयपुर गई हूँ, मैं अपनी बाल्टी, वहां बाल्टी नहीं थी नहाने को, पहले दिन गई म्यूजियम में, वहां देखा वो जो दो बहने थी वो एक पोचे वाली बाल्टी, मैंने, मेरे को एकदम लगा, मैंने तो अपनी बाल्टी से टिफिन विफिन फटाफट निकाला, अपनी बाल्टी ली, हम प्लास्टिक की बाल्टी लेके चलते थे जहां जाओ अपना। तो शुरू के दिन भी बहुत अच्छे थे, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, और अब भी बहुत अच्छा है। अब तो सब कुछ बाबा, वो कहते हैं ना क्या, गोल्डन स्पून इन माउथ, आप तो ऐसे समय में आए हो जब गोल्डन स्पून इन माउथ है। हाँ, आप बाबा के बाद भाग्यशाली बच्चे हो ना, तो आपको सहन संतोष दीदी कहती है हम लोगों के टाइम में डायमंड स्पून इन माउथ था। लेकिन संतोष दीदी जितना वो पहले वाली बात है ना, सचमुच बना यज्ञ के प्रति इतना प्यार और इतना बस बाबा जो कहते उसके बाद कुछ नहीं, दादियों ने जो कह दिया उसके बाद कुछ नहीं। खैर ये कहानियां तो इतनी लंबी हैं, अगर शुरू हो जाएंगी तो फिर खत्म नहीं होगी, और संतोष दीदी को भी फिर तो टाइम भूल ही गया ना, ज्ञान सरोवर जाना है फिर बाद में मुझे कहेंगे इतनी देर लगा दी। तो आज तो आपका वैसे पहला दिन है, वेलकम सेशन है, तो इसलिए हमारा आज के शुभ दिन पर संतोष दीदी, शशि बहन और आप सब जयपुर से आए हुए भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। वो दिन भी बहुत अच्छे थे और अब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग आए तब फिर इतनी ज्ञान की गहराई तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहनों की त्याग तपस्या हमें आकर्षित करती थी। अब जाऊं नहीं, अभी तो सेवा आपने करनी है, तो हमें वो आकर्षित करती थी। हम लोगों ने क्या देखा, चंद्रमणि दादी को देखा, मनोहर दादी को देखा, बड़ी दादियों को, ये क्या करते हैं सारा टाइम योग कराते हैं। हम कहते थे ये तो बहुत आसान काम है, हम भी कर लेंगे ये तो, इसलिए हम भी आ गए। तो इसलिए वो जीवन भी बहुत अच्छा, अब भी बहुत अच्छा है। तो आज का आप सबका ये वेलकम सेशन है, आप सब बहुत महान हैं, जो ऐसी महान हस्तियां जिनका पालन पोषण स्वयं उस सर्वशक्तिवान ने किया है, वो पवित्रता की शक्ति, अनेक शक्तियां इन सबको कूट कूट करके भरी हैं, ऐसी महान आत्माओं के हम सानिध्य में हैं, तो सोचो आप कितने भाग्यवान हैं। आपके इस भाग्य की आपको पुनः बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।